पृष्ठ संख्या 35, असहयोग आंदोलन। यद्यपि सन 1917 ईस्वी से ही गांधी ने अपनी सत्याग्रह की रणनीति का परीक्षण भारतीय राजनीति क्षेत्र में प्रारंभ कर दिया था, फिर भी सन 1919 तक वह स्वेच्छा से ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था की हामी बने रहे। भारतीय शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना पारित की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1919 के अमृतसर अधिवेशन में घोषित किया कि सुधार अपर्याप्त, असंतोषजनक तथा निराशाजनक थे, किंतु फिर भी कांग्रेस ने इन सुधारों को यथाशीघ्र उत्तरदायी शासन की स्थापना की प्राप्ति के लिए क्रियान्वित करने का निश्चय किया। जलियांवाला बाग की हृदय विदारक दुर्घटना तथा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सुधारों के कट्टर विरोध के बावजूद कांग्रेस ने इन सुधारों के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखा। यह सब महात्मा गांधी, जो अब तक गोखले के पदचिह्नों पर चल रहे थे, के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ। असहयोगी गांधी 1915 से 1919 तक देश के सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी अंग्रेजी सरकार के एक सहयोगी के रूप में ही कार्य करते रहे, परंतु 1920 में गांधी के राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ आया। कतिपय घटनाओं और युद्धजनित परिस्थितियों ने उन्हें सहयोगी से असहयोगी बना दिया। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने सरकार के साथ असहयोग और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत निर्मित व्यवस्थापिका सभाओं के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। वे अब ब्रिटिश शासन व्यवस्था को शैतानी व्यवस्था कहने लगे और उसके साथ असहयोग का कार्यक्रम तैयार करने लगे। असहयोगी गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहला कदम असहयोग आंदोलन के रूप में उठाया, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, रॉलेट एक्ट। गांधी को असहयोगी बनाने तथा असहयोग आंदोलन की ओर मोड़ने वाली घटनाओं में पहली घटना ब्रिटिश सरकार की रॉलेट एक्ट थी। युद्धकाल के समय भारत सुरक्षा अधिनियम द्वारा विद्रोहात्मक कार्रवाई का दमन किया गया था। युद्ध समाप्ति के बाद सरकार को डर था कि क्रांतिकारी नेताओं से प्रभावित होकर भारतीय क्रांतिकारी भी सरकार के तख्ते को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। पृष्ठ संख्या 36। अतः युद्ध के बाद भी विद्रोहियों का दमन चक्र चलाने के लिए सरकार ने रॉलेट एक्ट को पास किया। इस एक्ट की व्यवस्थाएं बहुत कठोर थीं। इसके अंतर्गत सरकार किसी भी संदेहात्मक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना नज़रबंद कर सकती थी। इस अधिनियम में ऐसा महसूस किया गया कि इसके द्वारा सरकार वैधानिक आंदोलन को भी कुचल देना चाहती है। फरवरी 1919 में जब रॉलेट एक्ट पास हुआ, समस्त देश में एक स्वर से इस विधेयक का विरोध किया गया। उदारवादियों ने इसका विरोध किया। गांधी ने कहा, यदि रॉलेट एक्ट की सिफारिशों को व्यवहारिक रूप दिया गया तो मैं सत्याग्रह छेड़ दूंगा। परंतु सरकार ने उनके इस कथन की उपेक्षा की और विधेयक स्वीकार कर लिया। गांधी ने इस काले कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 की तिथि निश्चित की। निश्चित तिथि को देश में हड़तालें और जनसभाएं हुई, साथ ही विरोध तथा प्रदर्शन भी किया गया। दूसरा, पंजाब में सरकार द्वारा किए गए अत्याचार। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़तालें हुई। दिल्ली में यह हड़ताल 30 मार्च को आयोजित की गई, जिसमें पुलिस और हड़तालियों के बीच मुठभेड़ हो गई। परिणाम स्वरूप 8 व्यक्ति मारे गए। गांधी को दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया गया। गांधी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। पंजाब में दंगे प्रारंभ हो गए, लेकिन सरकार ने उन्हें निर्दयतापूर्वक दबा दिया। अमृतसर में डॉक्टर किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। इस खबर ने अमृतसर के लोगों में गहरी उत्तेजना पैदा कर दी। तीसरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी को असहयोगी बनाने वाली घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग का हत्याकांड थी। 12 अप्रैल 1919 को सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इस प्रतिबंध की सूचना संपूर्ण नगर में नहीं दी गई। 13 अप्रैल को राजनीतिक नेताओं ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। हजारों की संख्या में लोग एकत्र होने लगे और सेना के अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोई चेष्टा नहीं की। अभी सभा शांतिपूर्वक चल ही रही थी कि जनरल डायर 200 भारतीय और 500 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर बाग में घुस आया और बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिए निहत्थी जनता पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 10 मिनट तक निर्ममतापूर्वक गोलियों की बौछार होती रही। कांग्रेस द्वारा नियुक्त जांच समिति के सामने एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, इसमें 1000 व्यक्ति मारे गए, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की कुल संख्या 397 और घायलों की कुल संख्या 1200 मात्र थी। इस घटना से गांधी की आत्मा को बड़ा आघात पहुंचा। उनके लिए तो क्या, पूरे विश्व के लिए यह घटना रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। पृष्ठ संख्या 37। चौथा, मार्शल ला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 2 दिन बाद ही पंजाब के 5 जिलों में मार्शल ला लागू कर दिया गया। नलों में पानी बंद कर दिया गया और बिजली की लाइनें काट दी गईं। जिस गली में श्रीमती शेरवुड पर आक्रमण किया गया था, उस गली से निकलने वाले हर आदमी को पेट के बल होकर निकलना पड़ता था। रेल में 3रे दर्जे की टिकट बेचने की मनाही कर दी गई। सार्वजनिक स्थानों पर 4 आदमियों से अधिक का खड़ा होना अथवा एक साथ चलना रोक दिया गया। इस तरह सारा पंजाब यंत्रणा से पीड़ित हो गया। पांचवा, हंटर कमेटी की रिपोर्ट से उत्पन्न असंतोष। पंजाब सरकार के अत्याचारों की चारों तरफ निंदा की गई तथा देश के कोने कोने से इसकी जांच पड़ताल करने की मांग की गई। फलस्वरूप सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। हंटर समिति ने अपने प्रतिवेदन में सरकार के अत्याचारों पर पर्दा डालने की चेष्टा की। रिपोर्ट में कहा गया कि जनरल डायर ने बिल्कुल नेक नियति से कार्य किया, किंतु उसने जिन साधनों का प्रयोग किया वे अनुचित थे। जांच के फलस्वरूप सरकार ने जनरल डायर को भारत सरकार की नौकरी से अलग कर दिया, लेकिन सरकार ने उसके द्वारा की गई सेवाओं के सम्मान की तलवार तथा 2000 पौंड भेंट की। इन सब बातों का गांधी पर विशेष प्रभाव पड़ा और उनकी विचारधारा ने एक क्रांतिकारी मोड़ ले लिया। छठा, खिलाफत का प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की जर्मनी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। युद्धकाल में भारतीय मुसलमानों से सहयोग लेने के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया था कि युद्ध समाप्ति के बाद इंग्लैंड टर्की के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति नहीं अपनाएगा और न ही वह टर्की साम्राज्य को छिन भिन होने देगा। लेकिन अंग्रेज अपने वायदे से मुकर गए। उन्होंने टर्की के साम्राज्य को छिन भिन कर दिया। टर्की का सुल्तान, जो विश्व के मुसलमानों का खलीफा था, अब वह एक कैदी मात्र रह गया। इससे भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना बढ़ी। गांधी ने खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानों के विचारों का समर्थन किया। सन 1918 में हिंदुओं और मुसलमानों ने खिलाफत के प्रश्न पर विचार करते हुए जो एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया, उसमें खिलाफत आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया। पृष्ठ संख्या 38। गांधी ने अपना निश्चय व्यक्त करते हुए कहा, अगर सरकार खिलाफत जैसे प्रश्न पर धोखा देती है तो हम उससे असहयोग करने को बाध्य हैं। यह पहला अवसर था जब गांधी ने असहयोग की रणनीति का सहारा लिया। सातवां, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लिया गया है तथा वे आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। युद्ध समाप्ति के बाद कई पराधीन प्रदेशों में लोकतंत्र की स्थापना की मांग की गई तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। परिणामतः पराधीन देशों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ तथा राष्ट्रीय आंदोलनों को बल मिला। भारत भी इस घटना चक्र से अछूता नहीं रह सका। युद्ध के बाद उसके राष्ट्रीय आंदोलन को भी एक नई दिशा मिली। आठवां, देश की आर्थिक दुर्दशा। युद्ध में अत्यधिक आर्थिक व्यय वहन करने के कारण भारत सरकार की आर्थिक हालत खराब हो गई। वह कर्ज के बोझ से दब गई। मुद्रास्फीति के कारण अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें भी अत्यधिक वृद्धि हो गई। जनसाधारण के लिए जीवन निर्वाह कठिन हो गया। भूखमरी की नौबत आ गई। किसानों और मजदूरों की दशा तो और अधिक दर्दनाक थी। चंपारण में किसानों और अहमदाबाद में मजदूरों की आर्थिक दुर्दशा ने गांधी को सत्याग्रह की रणनीति के परीक्षण का अवसर दिया। नवा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में पर्याप्त संवैधानिक सुधार होंगे। सन 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीयों को प्रशासन के हर शाखा में अधिक से अधिक भागीदारी दी जाए और स्वशासन की ऐसी संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाए जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्वशासन प्रणाली भारत में स्थापित हो और वह ब्रिटिश सरकार के एक अंग के रूप में रहे। इस उद्घोषणा से भारतीयों के मन में बड़ी आशाएं बंधी थी, किंतु जब 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना प्रकाशित हुई तो उसमें भारतवासियों की आशा पर पानी फिर गया। उक्त योजना द्वारा न तो भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी और न ही उसमें भारतीय प्रशासन पर से गृह शासन के नियंत्रण के ढीले होने के चिन्ह थे। पृष्ठ संख्या 39। फलतः भारतवासी अत्यंत ही क्षुब्ध एवं कुपित हो गए। तिलक ने कहा कि ये सुधार संतोषप्रद ही नहीं निराशाजनक भी हैं। दसवां, प्लेग और इन्फ्लुएंजा। जनता की आर्थिक दशा तो शोचनीय थी ही, उस समय प्लेग और इन्फ्लुएंजा के प्रकोप ने उसे और बदतर बना दिया। बहुत से व्यक्तियों को हाथ से जान धोना पड़ा। सरकार ने इनकी रोकथाम की जो प्रयास किए वह अपर्याप्त तथा असंतोषजनक था। 11वां, अकाल। 1917 में अनावृष्टि के कारण देश में अकाल फैल गया। अनेक व्यक्ति काल के ग्रास बन गए। सरकार की ओर से जनता का दुख दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। जनता में असंतोष बढ़ता ही गया। 12वां, सरकार का दमन चक्र। एक ओर तो सरकार की राजनीतिक सुधारों का आश्वासन दे रही थी और दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कड़े से कड़े कदम भी उठा रही थी। प्रेस एक्ट, सेडिशन एक्ट, एक्सप्लोसिव सबस्टेंट एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आदि दमनकारी कानूनों का निर्माण राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से ही किया जा रहा था। क्रांतिकारियों को फांसी, काला पानी और कारावास की सजा देने में कोई कसर उठा नहीं रखी गई। होम रूल आंदोलन जैसे वैधानिक एवं शांतिपूर्ण कार्यक्रम को भी निर्ममतापूर्वक दबा दिया गया। पंजाब में डायर का दमन चक्र बड़ी तेजी से और कठोरता से चला। सरकार की दमनकारी नीति ने जनता के असंतोष एवं विद्रोह की लहर को और तेज कर दी। गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया। उदारवादियों के विरोध के बावजूद गांधी अपने विचार पर दृढ़ रहे तथा कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कलकत्ता अधिवेशन के बाद कांग्रेस का नियमित वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में गांधी के असहयोग प्रस्ताव को भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस ने अपना उद्देश्य घोषित किया। इसमें शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीकों द्वारा स्वराज प्राप्त करना, पट्टाभि सीतारमैया ने नागपुर अधिवेशन की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि नागपुर अधिवेशन में वस्तुतः भारत के इतिहास में एक नूतन युग का प्रारंभ होता है। निर्बल क्रोध और प्रार्थनाओं का स्थान उत्तरदायित्व के एक नए भाव और आत्मनिर्भरता की एक नई भावना ने लिया। पृष्ठ संख्या 40। भारतीयों ने अनुभव किया कि यदि उन्हें स्वतंत्र होना है तो उसके लिए उन्हें स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए गांधी ने दो प्रकार के कार्यक्रम बनाए, पहला निषेधात्मक तथा दूसरा रचनात्मक। निषेधात्मक कार्यक्रम। निषेधात्मक कार्यक्रम का अर्थ सरकार के प्रति असहयोग करना। निषेधात्मक कार्यक्रम निम्नलिखित थे, पहला सरकारी उपाधियों का बहिष्कार, दूसरा सरकारी तथा सरकार से प्राप्त विद्यालयों का बहिष्कार, तीसरा सरकारी अदालतों का बहिष्कार, चौथा विधान परिषदों का बहिष्कार, पांचवा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, छठा दमनकारी कानूनों का बहिष्कार, सातवां सरकारी सेवाओं का बहिष्कार, आठवां कर न देना, नवां सरकारी दरबारों, उत्सवों और सरकार के सम्मान में आयोजित सरकारी या गैर सरकारी उत्सवों में शामिल नहीं होना। रचनात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत उन कार्यों को शामिल किया गया जिनसे जनता के कल्याण के साथ साथ देश में राष्ट्रीयता की भावना में भी वृद्धि हो। प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम निम्नलिखित थे, पहला सरकारी अदालतों का बहिष्कार करके पंचायतों की स्थापना करना, दूसरा कांग्रेस के झंडे के नीचे देश को संगठित करना, तीसरा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके खादी का प्रयोग करना, चौथा हिंदू मुस्लिम एकता की पुनर्स्थापना करना, पांचवा दलितों का उत्थान करना, छठा मद्यपान का बहिष्कार करना तथा सातवां राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना करके उसमें विद्यार्थियों को भेजना।